वही बाकी है। उन फिल्मों में से एक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और फिल्म में मैंने सचमुच आंसू बहाए हैं, वह है अवतार। मेरी राय में एक उत्कृष्ट कृति, जो खूबसूरती से दिखाती है कि प्रकृति के साथ संयोजन में जीवन सुपर आधुनिक जीवन की तुलना में बेहतर और खुशहाल है। मोशाव में जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमने घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गैस रिग बनाया और अब मोशाव के पास एक ईंधन फार्म पर युद्ध चल रहा है। अगर ईंधन फार्म को कुछ हुआ तो पूरा मोशाव हवा में होगा। लेकिन नहीं केवल ईंधन फार्म, वे एक हवाई अड्डा भी बनाना चाहते हैं। हम मोशाव में हंसते हैं कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वे मोशाव के मध्य में एक खेल के मैदान में एक छोटा परमाणु रिएक्टर बनाएं, जो ईंधन फार्म के समान ही उपयोगी हो। ये खूबसूरती से दिखाता है कि सब कुछ कहां जा रहा है। इसमें ऊर्जा का निवेश नहीं किया गया है, प्रकृति को पुनर्स्थापित करना, लेकिन प्रकृति पर निर्माण करना, उसके बगल में नहीं, युद्ध जो कुछ है उसे संरक्षित करने का है। जैसे मोशाव में हम घर के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही इसराइल और पृथ्वी के सभी निवासियों को घर के लिए लड़ना चाहिए। इतिहास की विभिन्न सभ्यताओं के पतन के अध्ययन की एक असाधारण पुस्तक कोलैप्स, जेरेड डायमंड में कहा गया है कि वास्तव में सभ्यताओं का पतन न केवल पर्यावरण के विनाश के कारण हुआ, बल्कि उस विनाश के प्रति सरकार के रवैये के कारण भी हुआ। अस्तित्व के उदाहरण के रूप में सबसे अच्छे आइसलैंडर का हवाला दिया जाता है, जो जानता था कि आइसलैंड में जीवन को कैसे अनुकूलित किया जाए और जितना संभव हो सके पर्यावरण के विनाश से बचा जाए। इतिहास पर नजर डालें तो हम आज की स्थिति के बारे में सब कुछ समझते हैं। इतिहास बताता है कि अतीत में जंगलों की कटाई, कृषि और अत्यधिक सिंचाई से संबंधित मिट्टी की समस्याएं, अत्यधिक शिकार, अत्यधिक मछली पकड़ना, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण का विनाश हुआ। सभ्यताओं के पतन से ऐसा प्रतीत होता है कि आज खतरा केवल एक निश्चित संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। चीन में कोयला जलाने से कनाडा के मौसम पर असर पड़ता है। जैसे हर कोई प्रभावित होता है, वैसे ही प्रतिक्रिया वैश्विक होनी चाहिए। बुरा लॉटरी जीतता है, अच्छा अपना रास्ता बदलता है। मान लीजिए कि मानवता लॉटरी जीतती है और पृथ्वी को गर्म न करने और पर्यावरण को नष्ट न करने की तकनीक ढूंढती है। मानव स्वभाव जो इसका कारण बनता है, ये पृथ्वी पर चलता रहेगा और अन्य नुकसान पहुंचाता रहेगा, ये स्पष्ट है। इसलिए समाधान व्यवहार को बदलने और प्रकृति और अच्छाई के साथ चलने से आना होगा। वैसे अधिकांश लॉटरी विजेता ठीक उसी कारण से अपनी कमाई हुई हर चीज खो देते हैं। 200-300 हजार वर्षों से मनुष्य होमो सैपियंस पृथ्वी पर रहते हैं। पिछले 50 वर्षों में उनकी गतिविधि के परिणाम स्वरूप यहां बहुत अधिक गर्मी पड़ने में कई दशक शेष हैं, और आज ही हम दुनिया में सभी प्रकार के स्थानों में परिवर्तन देख रहे हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह न केवल वार्मिंग है, बल्कि महासागरों का अम्लीकरण, जैविक प्रजातियों का विलुप्त होना, ओजोन को नुकसान और ग्रह पर कई अन्य समस्याएं भी हैं, जिनके प्रभावों के बारे में हम नहीं जानते हैं। एकमात्र तरीका संभवतः प्रकृति से लड़ना और नई प्रौद्योगिकियों की तलाश करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ शांति बनाना है। प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य के युद्ध में इतिहास और तर्क बताते हैं कि प्रकृति जीवित रहेगी। समाधान स्वतंत्र विचार के अभ्यास में आता है। कठोर तथ्यों का सामना करना और उन पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है, न कि उन्हें नजरअंदाज करना। पृथ्वी को उसके प्राकृतिक स्वरूप में फिर से कल्पना करना और वांछित समाधान लागू करना सार्थक है, भले ही वे कठिन हों। जान लें कि निराशावादी होने का एक कारण है, और यह इस तथ्य से है कि मनुष्य अपना ख्याल नहीं रखते हैं। आप इसे दुनिया में मोटापे के चलन में देखें तो पर्यावरण की रक्षा वे कैसे भी करेंगे। आखिरकार ये स्पष्ट है कि लोग पर्यावरण से अधिक अपने बारे में सोचते हैं। हम पृथ्वी की तरह हैं। आज मानवता पृथ्वी को उसी तरह जहर दे रही है जैसे वो असंगत आहार से खुद को जहर देती है। ये पारस्परिकता दिलचस्प है। जैसे आपको स्वस्थ रहने के लिए मानव शरीर में लाखों प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए स्वस्थ भोजन या विशेष चीजें खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल वही भोजन खाएं जो हमें सूट करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप पृथ्वी पर करते हैं, विशेष कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन केवल इसकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कृत्रिम रूप से वातावरण से कार्बन हटाना एक तरह से मधुमेह की गोली लेने जैसा है। कार्बन वातावरण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तथ्य में कुछ विडंबना है कि हम उसे जहर दे रहे हैं जिसने कथित तौर पर हमें बनाया है, पृथ्वी को। सही तरीका प्रकृति पर मनुष्यों की पकड़ को संतुलित करना है। आज हम प्रकृति का गला घोंट रहे हैं। हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन को बदलने की जरूरत है। प्रकृति से बहुत अधिक न लें ताकि हमारे पोते पोतियों को भी प्रकृति मिले। क्षति के लिए भुगतान जोड़ना भूल जाइए। आज अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई घटक नहीं है जो पर्यावरण को हुए नुकसान को ध्यान में रखता हो। जो शक्ति सब कुछ चलाती है वह आर्थिक है, और प्रत्येक आर्थिक प्रक्रिया समीकरण में किसी अन्य कारक पर विचार किए बिना लाभ और हानि की गणना करती है। राज्य के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना और जुर्माना या इनाम लगाना आवश्यक है। उत्पादन या सेवा के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए पुरस्कार देना जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकने का एकमात्र तरीका है उन्हें नुकसान पहुंचाने पर मूल्य टैग लगाएं। आज ज्यादातर चीजों में ये शून्य के करीब है। मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसे पदार्थ का उत्पादन करती है जो भूजल प्रदूषण का कारण बनता है, तो इस भूजल की सफाई के बराबर भुगतान होगा। व्यवसाय में सभी प्रक्रियाओं में पर्यावरण को शून्य के मान पर लिया जाता है, इसलिए केवल राज्य, बेहतर होगा कि पूरी दुनिया क्षति की मरम्मत की कीमत पर ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान का भुगतान करेगी। इसके लिए मंत्रालय पर्यावरणीय गुणवत्ता को अपना काम करने और कार्य करने की आवश्यकता है। आज ये लगभग अस्तित्व में नहीं है बिना किसी दूरदृष्टि के। ये देखना आश्चर्यजनक होगा कि अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी पर्यावरण को शून्य क्षति के साथ खुद को पुनर्गठित कर लेगी, जब इसके लिए भुगतान करने में बाधा होगी पर्यावरण को नुकसान। टेस्ला का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका से सरकारी पुरस्कार के कारण हुआ, और ये दिखाता है कि कैसे एक वित्तीय हित दुनिया यानी ग्रह की विषाक्तता को हल कर सकता है। हम व्यवसायों के अनुसार कर या प्रोत्साहन जोड़ना भूल गए पर्यावरण को उनका नुकसान। ऐसा कदम अर्थव्यवस्था की संरचना को बदल सकता है जिसका एकमात्र विचार आज पैसा है। अर्थव्यवस्था लोगों को आलसी होने से रोकती है। अधिकांश व्यवसाय हमें आसानी से काम करने में मदद करते हैं, लेकिन न्यूनतम काम के फॉर्मूले में पर्यावरण का एक तत्व जोड़ना आवश्यक है भविष्य के लिए। ये देने लायक लगता है आलस्य ऊपर। जनसंख्या का आकार, जन नियंत्रण के माध्यम से पृथ्वी की जनसंख्या कम करना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। एपिसोड 4 देखने की अनुशंसा की जाती है। सरकार की स्थिति की समझ की कमी के कारण देश में वायु गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं है। मानवता को खिलाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ और मछली और चारागाह, व्यक्ति को प्रकृति के साथ जाना चाहिए और इसके खिलाफ नहीं। समाधान महासागरों और समुद्रों के साथ साथ पेड़ों की फसलों में भी है। समुद्र में सभी मानवता के लिए मछली पकड़ने के लिए पर्याप्त जगह है, पर्याप्त मछलियां हैं। हमें बस मछली पकड़ने और मछली की गुणवत्ता पर एक वैश्विक शासन की आवश्यकता है समुद्र, ताकि वहां पर्याप्त मछलियां होंगी। मछलियां मनुष्यों के लिए सबसे उपयुक्त भोजन भी हैं। पेड़ों से गायें एक फायदा देती हैं कि आपको खाली जमीन नहीं छोड़नी पड़ती है और आपको हर मौसम में इसे हल नहीं करना पड़ता है, जिसे भारी पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है। सबसे महत्वपूर्ण खेत चावल, गेहूं और ज्वार हैं। उन्हें सबसे उपयुक्त स्थानों पर उगाया जाना चाहिए और घरेलू जानवरों और गाय, भेड़, बकरियों को खिलाने के लिए फसलों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मुर्गियों को प्राकृतिक घास खिलानी चाहिए। प्रयोगशाला में उगाए गए मांस के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी वित्तीय कीमत, पर्यावरणीय क्षति, खनिज आते हैं और मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं। मुझे संदेह है कि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं। गाय, भेड़ और बकरियों को पालने के लिए प्राकृतिक चारागाह ही समाधान है और उन्हें प्रकृति भंडारों और खुले क्षेत्रों में पालने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये संभव है, केवल राज्य प्रबंधन की आवश्यकता है। मेरी राय में उन्हें खलिहानों, चिकन कॉपों आदि में पालने से मना किया जाना चाहिए, और यह संभव है। न केवल ऐसे पालने में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और फिर वे कोशे नहीं होते हैं, क्योंकि शेर की आत्मा मना करती है जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, लेकिन उनका मांस भी उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनके पालन पोषण की स्थितियों के कारण मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला विचार प्रयोग, कल्पना करें कि आप ऊपर से बनाई गई पृथ्वी को देखते हैं। क्या आप मनुष्यों को देखना पसंद करेंगे? देख रहे हैं पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए नई तकनीकों के लिए? प्राकृतिक प्रक्रियाओं की ओर लौटना और समसामयिक ज्ञान की मदद से प्रकृति को बनाए रखना, अधिकांश स्थानों पर जीवन को सक्षम बनाना। यदि आप हमारे समय में पीछे जा सकें तो आप हमें क्या करने की सलाह देंगे? प्रौद्योगिकी ने हमें गड्ढे में डाल दिया है, लेकिन ये हमें इससे बाहर नहीं निकाल पाएगी। प्रौद्योगिकी को केवल उसके तत्काल जीवनकाल से मापा जाता है, न कि उसके प्रभाव से पर्यावरण। वे नहीं जानते थे कि प्रौद्योगिकी पृथ्वी पर प्रक्रियाओं के लिए समस्याग्रस्त थी, और यदि उन्हें पता भी होता तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया होता। जबकि प्रौद्योगिकी ने बहुत प्रगति और सुविधा प्रदान की, इसने पर्यावरणीय गिरावट का भी कारण बना। यदि तुमने यहां से कुछ नहीं लिया तो कम से कम यही ले लो, पर्यावरण की गुणवत्ता और ग्लोबल वार्मिंग का समाधान अब तकनीक नहीं है, बल्कि व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव है। हमें प्रकृति के साथ रहने के लिए आवश्यक सभी तकनीकें निश्चित रूप से खुद की मदद कर सकती हैं। इसमें न तो ज्ञान के पत्थर की जरूरत है और न ही किसी नए आविष्कार की। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह पहले से ही इसमें मौजूद है। यह आश्चर्यजनक है कि मानवता कितनी चतुर है और एक आदमी को चंद्रमा पर ले आई, लेकिन उड़ान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है रोड्स के लिए या 7000 सीसी कार के लिए। मानवता ने हिटलर से लड़ाई की और लाखों लोगों को खो दिया, लेकिन पृथ्वी को ठीक करने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो वास्तव में जीवन की गुणवत्ता नहीं है। पृथ्वी जीवित है और सक्रिय है। पृथ्वी एक प्रकार का जीवन है, लाखों प्रक्रियाओं के साथ होना जो इसमें जीवन की स्थितियों को संरक्षित करती हैं। प्रौद्योगिकी इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का स्थान नहीं ले सकेगी। जिस तरह प्रौद्योगिकी मनुष्यों में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नहीं करती है, केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही वास्तव में समस्या की जड़ को हल करती है, और इसराइल में भी यही स्थिति है। आज की पर्यावरणीय समस्याओं की जड़ प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता में खोजी जा सकती है, जो अक्सर प्राथमिकता देती है दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव की तुलना में अल्पकालिक लाभ। सीमा। इस अदूरदर्शी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण और महासागर अम्लीकरण जैसे हानिकारक परिणाम सामने आए हैं। पृथ्वी लाखों प्रक्रियाओं वाली एक जटिल जीवित प्रणाली है जो जीवन को संरक्षित करती है, ऊर्जा, भोजन और अन्य संसाधनों जैसी मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से काफी प्रभावित होती है। केवल मनुष्यों के व्यवहार को बदलने और पर्यावरणीय समस्याओं का इलाज करने के लिए मौजूदा ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है और हानिकारक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को कम करना। टिकाऊ प्रथाएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मानवीय जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, छोटे, अधिक पर्यावरण के अनुकूल आवास अपनाने से समग्र खुशी को बनाए रखा जा सकता है या उसमें सुधार भी किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन का अभ्यास भी एक स्वस्थ ग्रह में योगदान दे सकता है। पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में बाधाएं। कई कारकों ने पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में बाधा उत्पन्न की है। ऐसा ही एक कारक विश्व सरकार या एकीकृत वैश्विक प्राधिकरण की कमी है, जो अल्पकालिक सोच को नीतिगत निर्णयों पर हावी होने की अनुमति देता है। इसके अलावा, पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के हानिकारक प्रभाव को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया या नजरअंदाज कर दिया गया। आज मौजूद ज्ञान की मदद से पर्यावरण को नष्ट किए बिना मनुष्य की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना संभव है। खुशी का स्तर कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। ये सब है या कुछ भी नहीं पर्यावरणीय चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच सहयोग आवश्यक है। इन देशों में अन्य देशों को प्रभावित करने और सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित वैश्विक पहल को बढ़ावा देने की क्षमता है। ग्रह को होने वाले नुकसान को दूर करने और इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कट्टरपंथी और वैश्विक उपायों की आवश्यकता है। पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्थायी प्रौद्योगिकी, वैश्विक सहयोग और अल्पकालिक लाभ से दीर्घकालिक पर्यावरण प्रबंधन तक की सोच में बदलाव को जोड़ती है। डोट। सरकारी परिवर्तन। जितना संभव हो सके हर किसी को एक पर्यावरणीय हस्ताक्षर दें और प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरणीय हस्ताक्षर के लिए एक वार्षिक कोटा दें। समुद्री कछुओं जैसे एक विशिष्ट जानवर की रक्षा करें। दुनिया के बढ़ते हिस्सों में संपूर्ण प्राकृतिक प्रणाली को संरक्षित करें। महत्वपूर्ण परिवर्तन। पर्यावरण की रक्षा करें और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करें। इन परिवर्तनों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करते हुए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कर कानूनों को बदलना शामिल है। ये दृष्टिकोण व्यवसायों को हरित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू किया जाएगा, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में परिवारों को प्रति परिवार एक बच्चे तक सीमित करना। उदाहरण के लिए, इसराइल 1 अरब लोगों की आबादी हासिल करने की आकांक्षा रख सकता है। इससे संसाधन खपत को प्रबंधित करने और पर्यावरणीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। व्यक्तियों को एक पर्यावरण हस्ताक्षर कोटा सौंपा जाएगा, जो समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। हालांकि यह कदम गोपनीयता से समझौता कर सकता है और निगरानी की आवश्यकता है, ये संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देगा और हमारे सामूहिक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा। पृथ्वी के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रकृति भंडार के रूप में नामित किया जाएगा और इन हरे फेफड़ों को आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रियाओं को संरक्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाएगा। प्राकृतिक रूप से पाले गए गोमांस और मुर्गियों, जैविक भोजन और टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों पर ध्यान देने के साथ खाद्य उत्पादन और खपत में एक आदर्श बदलाव आएगा। इस दृष्टिकोण से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि मानव स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हमारे आहार को समायोजित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ भविष्य की पीढ़ियों के लिए संभावित लागत से कहीं अधिक है। परिवहन पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को प्राथमिकता देगा और गैर आवश्यक जरूरतों के लिए परिवहन के स्थायी साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए ऊर्जा उत्पादन विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भर करेगा। विनिर्माण उद्योग को केवल बायोडिग्रेडेबल और जैविक उत्पादों का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। इससे अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। प्लास्टिक उत्पादन को भी विनियमित किया जाएगा और गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाएगा। कृषि प्राकृतिक और टिकाऊ प्रथाओं में वापस आ जाएगी जो पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता देती है। अंत में स्वच्छ और हरित विकल्पों की ओर बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए रासायनिक उद्योग को कम किया जाएगा। मानवता दीर्घकालिक के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? पर्यावरणीय समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने और मानवता के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक सोच आवश्यक है। हालांकि विभिन्न कारक इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने से रोकते हैं, जिनमें अल्पकालिक पुरस्कार, तत्काल लाभ पर ध्यान केंद्रित करना और वैश्विक समन्वय की आवश्यकता शामिल है। यह आलेख इन कारकों की जांच करेगा और यह समझाने के लिए शोध साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि मानवता दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के लिए संघर्ष क्यों करती है। अध्ययनों से पता चला है कि लोग दूर के भविष्य के लाभों पर तत्काल पुरस्कारों को प्राथमिकता देते हैं, एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जिसे अस्थायी छूट के रूप में जाना जाता है। फ्रेडरिक लोवेनस्टीन और ओडोनोग्यू 2002। यह अल्पकालिक फोकस लोगों को उनके कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने से रोकता है। जनता का ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर स्थानांतरित करने के लिए मजबूत नेतृत्व आवश्यक है, क्योंकि नेता सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित कर सकते हैं और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बेनिस और नैनस 1985। कई व्यवसाय और उद्योग प्रक्रियाओं और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने पर तत्काल लाभ को प्राथमिकता देते हैं। अल्पकालिक मुनाफे पर यह ध्यान दीर्घकालिक स्थिरता को कमजोर करता है और पर्यावरणीय गिरावट में योगदान देता है। पर्यावरणीय विचारों को आर्थिक गणनाओं में एकीकृत करना, जैसे कि प्राकृतिक पूंजी लेखांकन के माध्यम से, इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है। कोस्टाजा एट अल 1997। दुनिया की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दैनिक अस्तित्व में व्यस्त है, जो दीर्घकालिक योजना के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। गरीबी और आर्थिक असमानता इस समस्या को बढ़ाती है, क्योंकि अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे लोग अल्पकालिक पुरस्कारों को प्राथमिकता देने की अधिक संभावना रखते हैं। हॉसहोफा और फेयर 2014। बड़े निगमों का राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों पर काफी प्रभाव होता है और वे अक्सर अधिकतम लाभ को प्राथमिकता देते हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन। कॉर्पोरेट प्रथाओं में सीमित पर्यावरणीय जिम्मेदारी प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर क्षरण में योगदान करती है। वोगेल 2005। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तिगत देशों द्वारा एकतरफा प्रयास महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते, जैसे कि पेरिस समझौता, सामूहिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने और दीर्घकालिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। बोडेंस्की 2016। पर्यावरणीय समस्याओं के उपचार में दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता देने का संघर्ष विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें शामिल हैं संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, नेतृत्व, आर्थिक विचार और वैश्विक समन्वय की आवश्यकता। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मानवता का ध्यान अल्पकालिक लाभ से दीर्घकालिक स्थिरता की ओर स्थानांतरित करने के लिए मजबूत नेतृत्व, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।